नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में इंदिरा डॉक पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर लोगों को सतर्क किया। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की। और क्रिकेट में अबुधाबी में भारत ने T20 एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इनसे प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क संपर्क और चिकित्सा क्षेत्र को लाभ होगा।
आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में अकेले समुद्र क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्य 7,800 करोड़ से अधिक है। इनमें मुंबई में एक नया क्रूज टर्मिनल, कोलकाता और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नई कंटेनर सुविधाएं और कंडला के दीनदयाल बंदरगाह पर ग्रीन बायो मेथेनॉल प्लांट जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात के लिए 26,300 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें छारा बंदरगाह पर LNG टर्मिनल जैसे नए ऊर्जा संयंत्र और 70 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 मार्गीय परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री कच्छ के पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित धोरडो गांव का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री धोलेरा औद्योगिक शहर का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की है। भारत ने हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व समुदाय से अपने प्रयास तेज करने का भी अनुरोध किया है। भारत ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद पाकिस्तान और सेना के बीच के गठजोड़ से परिचित है। पाकिस्तान में आतंकी गुटों के ताजा वीडियो के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं स्थिति को अधिक चिंताजनक बनाती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सहित हर बहुपक्षीय मंच के दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सख्ती से निपटने पर जोर दिया जाता रहा है। इन दस्तावेज में सीमा पार आतंकवाद की भी चर्चा होती रही है। भारत नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन का भारत स्वागत करता है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान में नौकरी के वायदे या प्रस्ताव के झांसे में न आने की सलाह दी है। हाल में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को ईरान में रोजगार देने या किसी अन्य देश में नौकरी के लिए भेजे जाने का प्रलोभन दिया गया। ईरान पहुंचने पर इन लोगों का आपराधिक गिरोह ने अपहरण कर लिया और उनकी रिहाई के लिए परिवार से फिरौती मांगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल पर्यटन वीजा पर प्रवेश की अनुमति देती है। नौकरी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ईरान में वीजा मुक्त प्रवेश का वायदा करने वाले एजेंट आपराधिक गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधन की अनुमति के पक्ष में मतदान किया है। 193 सदस्य देशों में से 145 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका और इसराइल ने प्रस्ताव का विरोध किया। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए फलस्तीन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अब 25 सितंबर को विश्व समुदाय को संबोधित कर सकेंगे। ये सत्र 23 सितंबर से शुरू होगा। भारत ने फलस्तीन को 1988 में मान्यता दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से अभिप्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी नागरिकों को बीमा सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी को बीमा सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित जन सुरक्षा की योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर 2,00,000 रूपए तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी।
हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं, कितना मेडिकल चेकअप होता है और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा और आश्वासन योजना है। ये देश के सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रूपए का कवर प्रदान करती है। एक लाभार्थी ने अपने परिवार का अनुभव बताया।
माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहाँ से हम लोग लेके आए पटना एम्स में, तो यहाँ पे लगभग 4,94,000 रूपए का खर्चा बताया था। तो हमने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया, तो हमको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा।
अनिश्चितताएं भारत के गरीबों के सपनों और आकांक्षाओं को पटरी से उतार सकती हैं। इसीलिए सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि प्रत्येक नागरिक को बीमा कवरेज मिले, सभी के लिए किफायती बीमा उपलब्ध हो और सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी, ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र में जीएसटी सुधार के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं।
सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी की दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। एयर कंडीशनर और डिशवॉशर जैसी वस्तुओं पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं टेलीविजन और गैर टीवी मॉनिटर पर भी जीएसटी दरों को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% के टैक्स स्लैब में आती थी। करों में की गई कटौती से बाजार में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली की शुभानंद मिश्रा ने इन सुधारों का स्वागत किया है।
एसी और टीवी पे जो जीएसटी रेट कम हुआ है, ये सरकार द्वारा किया गया एक सराहनीय निर्णय है। ये बदलाव विशेष रूप में मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी राहतकारी है। इस टैक्स कटौती से एसी और टीवी की कीमत इतनी कम होगी, इससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ घटेगा। यह निर्णय जनहित के लिए एक सकारात्मक कदम है।
त्योहारों के सीजन से पहले इन सुधारों से एसी और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। नए कर सुधार इस सोमवार से लागू होंगे। नितिका गुप्ता के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आकाशवाणी से आज शाम 6:30 बजे प्रसारित फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत एक बार फिर विश्व डाक संघ की प्रशासनिक परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय डाक व्यवस्था के सुधारों और डिजिटल पहलों में विश्व समुदाय के विश्वास का पता चलता है। भारत 1876 से ही विश्व डाक संघ का सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के दौरे पर रहेंगी। वे गया जी में विष्णुपद मंदिर में पितरों के लिए पिंडदान करेंगी। गया जी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पिंडदान और तर्पण करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश के लाखों स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की एक घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित होकर किशोर व नारू अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटा सकता। आयोग ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया गया है। आयोग ने बताया कि 2023 में नाम हटाने के संदिग्ध प्रयास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग के अनुसार अलंद में नाम हटाने के लिए 6018 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से केवल 24 ही सही पाए गए। जम्मू संभाग में लगातार बारिश और जलभराव के कारण रद्द की गई कई रेलगाड़ियां कल से फिर चलेंगी। उत्तर रेलवे के अनुसार जम्मू तवी वाराणसी, जम्मू तवी हावड़ा और जम्मू तवी पटना रेलगाड़ियां कल से फिर चलेंगी। श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलगाड़ी सोमवार से चलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तकनीकी क्षेत्र में विदेशियों की संख्या सीमित करने के लिए H-1B वीजा पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे ऐसे वीजा पर दूसरे देशों से कर्मियों को लाने की इच्छुक कंपनियों को हर साल प्रति वीजा $1,00,000 का भुगतान करना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी जिन कर्मचारियों को लाना चाह रही है वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमरीकी कर्मचारी उनका स्थान नहीं ले सकते। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में कल ओमान को 21 रन से हरा दिया। अबुधाबी में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में आज दिल्ली में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
धन्यवाद कनक। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत कई अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है डूसू चुनाव में एबीवीपी का फिर परचम, 3 सीटों पर मिली जीत। दिल्ली मेट्रो में रियायती पास का वादा, जीत में तुरुप का इक्का हुआ साबित। पंजाब केसरी की भी ऐसी ही सुर्खी है। देशबंधु का शीर्षक है चुनाव आयोग ने लापता राजनीतिक दलों पर कसा शिकंजा, 474 और दलों को सूची से हटाया। लोकसत्य लिखता है 6 साल से चुनाव न लड़ने पर 474 पार्टियां डीलिस्ट। दिल्ली को मिला 57,362 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान। राष्ट्रीय राजधानी को जल भराव और ड्रेनेज की समस्या से दिलाएगा निजात, राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है। हिंदुस्तान ने इस मौके पर शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की घोषणा दी है, पाकिस्तान जा रहा पानी दिल्ली वालों को मिलेगा। मणिपुर में सुरक्षा बलों के वाहन पर हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर जनसत्ता, अमर उजाला और पंजाब केसरी ने पहले पन्ने पर दी है। मणिपुर में बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन, दैनिक ट्रिब्यून और राष्ट्रीय सहारा में है। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध की खबर देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून ने प्रकाशित की है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। 34,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की। भारत ने ईरान में फर्जी नौकरी के प्रस्तावों को लेकर लोगों को सतर्क किया। अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की। और क्रिकेट में अबुधाबी में भारत ने T20 एशिया कप के अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ओमान को 21 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।